તારીખ 11/11/1996 શ્રી નિર્ભ્રાંત દર્શનની કેડી ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 104.
દર્શનની કેડી પાણું 9 દસ વચનો લીધા છે, એનાથી નીચેનો પેરેગ્રાફ. ઉપરોક્ત દસ વચનોમાં પહેલા વચનને સૌથી વધુ મહત્વ તેમણે આપ્યું છે. કૃપાળુ દેવે પાત્રતાને દર્શાવનારા આ દસ વચનો લખ્યા છે. એમાં સૌથી પહેલા વચનને વધારે મહત્વ તેમણે આપ્યું છે. તે આ વિષયના ઊંડા રહસ્યનું સૂચક છે. પાત્રતાનો જે વિષય છે એનું જે રહસ્ય છે, એ રહસ્યનું ઊંડાણ છે. હે, હિન્દીમાં ઉપરોક્ત દસ વચનો મેં પહેલા વચન સબસે અધિક મહત્વ, પહેલા વચન કો સબસે અધિક મહત્વ કૃપાળુ દેવ ને દિયા હૈ. જો મહત્વ સૂચના કરતા હૈ કે ઇસ વિષય કા યે ગહન રહસ્ય હૈ ઓર મુમુક્ષુતા કે અન્ય સર્વગુણ ઉત્પન્ન હોને કા કારણ ભી હૈ. બાકી કે જો ગુણ ઉત્પન્ન હોને વાલે હૈ વો ભી પહેલા પહેલે મેં આ જાય, પહેલે પ્રકાર મેં આ જાય કોઈ જીવ, તો બાકી કે પાત્રતા કે આનુષંગિક પરિણામ ઉત્પન્ન હો જાયેંગે. ઇસકા વિશેષ વર્ણન આગે કરેંગે. ઇસકે પ્રતિ એક પૂરા પ્રકરણ લિખા હૈ ઇસ પુસ્તક મેં, પૂરા પ્રકરણ દૂસરા પ્રકરણ ઇસી વિષય મેં લિખા ગયા હૈ. મૂળ પ્રકરણ તો વહી લિખને કા થા. उसके पीछे बैकग्राउंड ऐसा है कि गुरुदेव का स्वर्गवास होने से 99.9 समाज का विभाग ने इसी विषय में भूल किया. कितना समाज? 99.9 बड़े बड़े विद्वान भी इसमें आ गए. 70 उसके विषय में ही भूल किया. क्यों? तो गुरुदेव तो चल बसे, બેંસરી રહે ગયા. સારી સમાજ બેંસરી કે વિરોધ મેં આ ગઈ. જબકિ બેંસરી ને કોઈ એસી પ્રવૃત્તિ નહીં કિયા થા કે અપના વિરોધ હો જાય. ઇસલિયે વિરોધ હોને મેં વો જરૂરી નહીં હૈ કે કોઈ પ્રવૃત્તિ હોવે તો હી વિરોધ હોવે. વો તો અપને ચાર દીવાર સે કભી બહાર નહીં નિકલી. और कोई सामाजिक प्रवृत्ति में शुरू से रस नहीं लिया, फिर भी सारी समाज उनके विरोध में आ गई. तो हम लोग बंसी के पास जाते थे, सत्संग करते थे. फिर हमारे सत्संग में वो विषय बहुत चलता था, देखो ये कितनी बड़ी भूल हो रही है. तो बहुत सी बातें निकलती थी इसमें. फिर ये हीरालाल जी ने आग्रह रखा कि बहुत सी बातें आती हैं, हमको भी आज तक मालूम नहीं थी, उनको खुद को भी नई नई बातें मिलने लगी इस विषय में. हमको भी मालूम नहीं थी, जो हम आपके पास साथ में रहते हैं तो भी हमको मालूम नहीं थी, तो दूसरे को मालूम कहाँ से होगी. इसलिए इस विषय पर प्रकाश डालने की बहुत आवश्यकता है. उन्होंने बहुत आग्रह किया कि इस पर आप कुछ लिखिए. मैं इन दिनों में व्यवसाय में, बिजनेस में रुका हुआ था, तो लिखने का मेरे पास कोई समय नहीं था. बार बार वो कहते रहे, बार बार कहते रहे। कभी तो ऐसा उनको तक भी, ये तो निवृत्ति का समय 4-6 महीना मिल जाए तभी लिख सकते हैं, तो वो 4-6 महीना निवृत्ति ले लीजिए ऑफिस में से, उसका कोई सेक्रीफाइस करना हो तो हम करेंगे, लेकिन ये लिखना जरूरी है। बहुत पीछे लगे थे, फिर हम एक दफे लिखने को बैठे, तो प्रकरण तो एक ही लिखने का था जी। तो मुमुक्षु की भूमिका में सत्पुरुष का प्रत्यक्ष योग का महत्व कितना होता है, क्या होता है, किस प्रकार से होता है, तो एक ही प्रकरण लिखने का हिसाब से हमने कलम उठाई थी, लेकिन प्रकरण हमने तीन तीन लिख दिए। पहला प्रकरण लिखा कि मुमुक्षु कैसा होना चाहिए, तो ये विषय चलता है। फिर दूसरा प्रकरण जो मुख्य लिखने का था वही लिखा, और तीसरा प्रकरण लिखा स्वरूप की पहचान क्या है, क्योंकि क्रम में मुमुक्षुता जो आती है नेचुरली, ये पुस्तक इसी क्रम से लिखने में आ गई, क्रम सोचा भी नहीं था कि क्रम से लिखे, लेकिन क्रम मालूम था तो यही क्रम आ गया कि पहले तो मुमुक्षुता आनी चाहिए, मुमुक्षुता आने से सत्पुरुष की पहचान आनी चाहिए जो पहला संकेत है, और फिर स्वरूप की पहचान आनी चाहिए जो दूसरा संकेत है, तभी सम्यक दर्शन होगा
जी।
तो इस प्रकार से तीनों विषय पर तीन प्रकरण सहज रूप से लिखने में आ गया यही क्रम से। इसलिए यहाँ लिखा है कि इसका वर्णन आगे करेंगे, मतलब दूसरे प्रकरण में करेंगे, नहीं ये प्रकरण नहीं चल रहा है, बात तो आई मुख्य रूप से वो, लेकिन प्रकरण वो नहीं है, और बीच में ये प्रकरण लिख लें तो मूल प्रकरण तो साइड में हो जाए कि मुमुक्षुता कैसे होनी चाहिए, इसलिए वो बात आगे लिखेंगे, ऐसा करके विषय को संक्षिप्त कर दिया है यहाँ पर। तो ये पहला जो पॉइंट है उसको तो आगे का प्रकरण में रख करके ही समाप्त कर दिया है, इसकी विशिष्टता यहाँ पर नहीं की। उपरोक्त 10 वचनों में पात्रता वाला जी तत्वता सूक्ष्म उपदेश की बहुत ऊंडी जिज्ञासा में आकर के उपदेश को झेलता है। जो जीव पात्रतावान होता है उसकी योग्यता में एक खास बात वो है कि सूक्ष्म उपदेश जो है, उपदेश में स्थूल और सूक्ष्म ऐसा दो विभाग है, उसमें जो सूक्ष्म उपदेश है वो द्रव्यानुयोग का है, और उसमें भी जो सूक्ष्म उपदेश है वो अध्यात्म का है। तो उस विषय में वो बहुत गहरी जिज्ञासा में हमेशा रहता है, और वो उपदेश को झेलने की तत्पर वृत्ति वाला रहता है हमेशा हमेशा, वृत्ति की तत्परता रहती है कि कब मिले मैं उसको झेलूं, कब मिले झेलूं, तो उसकी अपेक्षा वृत्ति में हमेशा रहता है। जिस अपेक्षा में वो खड़ा है वही चीज उसको मिल जाता है तो उसको परिणमन में आसानी से आ सकता है। पात्रता वाला जीव तत्व का सूक्ष्म उपदेश की बहुत गहरी जिज्ञासा में रह करके उपदेश को झेलता है। जब कम पात्रता वाला जीव सूक्ष्मता में प्रवेश में अयोग्य होने से, पात्रता कम होने से, ऐसे सूक्ष्म विषय में प्रवेश करने की इसकी योग्यता नहीं होने से, ऐसा महत्वपूर्ण और प्रयोजनभूत विषय की उपेक्षा कर जाता है। तो पात्रता के अभाव में जो खास विषय है और प्रयोजनभूत विषय है उसमें उसकी उपेक्षा रह जाती है। अपेक्षा की जगह उपेक्षा क्या लिया कि एक मुमुक्षु को अपेक्षा रहती है, एक मुमुक्षु को उपेक्षा हो जाया करती है अयोग्यता के कारण से। तो वो विषय उसे छूट जाता है, वो विषय ऊपर से चला जाता है, उसको उसका निमित नैमित्तिक संबंध नहीं बचता। योग्यता तो तब प्रकट होती है कि सत्पुरुष का चरण का इच्छुक रहता है, तब वहां से योग्यता चालू होती है।
आचरण
उसकी भावना में आत्मकल्याण की भावना तीव्र होती है, उस भावना के वश उसको विवेक होता है कि अगर मेरी भावना को मुझे सार्थक करनी है तो इस विषय के जो तजग्न है, एक्सपर्ट है, उनके पास जाना चाहिए। जैसे बच्चा बीमार होता है तो पीडियाट्रिशियन के पास जाता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता। और हार्ट की बीमारी होती है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास नहीं जाता, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा। जिस विषय का जो तजग्न है उन्हीं के पास जाएगा तो बीमारी उसकी मिटेगी। तो ये तो भवरोग है, क्रॉनिक डिजीज, सबसे ज्यादा क्रॉनिक वो है। तो वो भवरोग से तीरने की कला जिसके पास है उसी के पास जाना चाहिए, इतना विवेक उसको आ जाता है। अल्प बुद्धिवान होवे तो भी उसमें कोई लंबी चौड़ी बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कि ये जो गमार होता है गामड़ा का, भेड़िया चराने वाला, भैंसा चराने वाला, उसको भी दर्द होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, वो किताब पढ़ने को नहीं बैठता या मेडिकल स्टोर में नहीं जाता, वो डॉक्टर के पास जाएगा। मेरे को इधर दर्द हो रहा है, तो उतनी अक्ल तो सामान्य में सामान्य बुद्धि वाले को होती है, लंबी बुद्धि की जरूरत नहीं है। इधर जो लोग बुद्धिमान है, आत्मकल्याण करना चाहते हैं, वो ग्रंथ लेकर के बैठ जाते हैं पहले और सत्पुरुष की खोज नहीं करते, वो अयोग्यता का कारण है। तो अयोग्यता में क्या चीज रही है कि वास्तव में ईमानदारी से उसको आत्मकल्याण नहीं करना है। आत्मकल्याण करने वाले के क्षेत्र में आप प्रवेश होता है लेकिन उसको करना नहीं है। तो धार्मिक क्षेत्र में आकर के भी वो दूसरी प्रवृत्ति में लग जाता है। और जो कुछ सत्पुरुष का उपदेश सुनने का मौका मिलता है तो उसमें पात्रता वाले को तो सूक्ष्म से सूक्ष्म उपदेश या बोध झेलने की भावना रहती है, अपेक्षा रहती है, अभिलाषा रहती है। जिसकी इतनी पात्रता नहीं है वो सूक्ष्म बोध आता है तो उसका उपयोग और जगह चला जाता है, उसका उपयोग नहीं टिकता, उस विषय पे उपयोग लगता ही नहीं, ये बात हो जाती है। तो महत्वपूर्ण जो विषय आया उसकी उपेक्षा उससे हो जाती है। गुरुदेव प्रवचन करते थे, कभी कभी इतनी सूक्ष्म और इतनी प्रयोजनभूत बात चलती थी तो कई लोग तो नींद ले लेते थे, नींद में आ जाते थे, उसका उपयोग ही नहीं टिकता है। तो कई लोग इधर उधर देखते हैं, तो कहीं लोग दूसरे विचार में चले जाते हैं, उसका उपयोग नहीं टिकेगा। ये विषय ऐसा है कि अपेक्षा वृत्ति में से जिला जाता है, जब अपेक्षा वृत्ति नहीं है तो उपेक्षा सहज हो जाती है। गुण प्राप्ति की अभिलाषा वाला मुमुक्षु को दूसरे गुणवान पुरुष के प्रति बहुमान आता है। क्या माच्छर्य का तो सवाल रहता ही नहीं, ये तो एकदम विरुद्ध प्रवृत्ति है। लेकिन जिसको गुण प्राप्ति की अभिलाषा है, ऐसे मुमुक्षु को तो दूसरे गुणवान पुरुष मैंने आत्मा कोई भी हो, दूसरे गुणवान जीव के प्रति बहुमान आता है। अर्थात गुण प्रति उसका प्रमोद भाव होना, जो अपनी अभिलाषा के साथ अनुकूल परिणाम है। गुण प्रमोद अतिशय रहे, रहे अंतर्मुख योग, प्राप्ति श्री सदगुरु रे जिन दर्शन अनुयोग। अतिशय गुण प्रमोद रे, कोई गुणवान मुमुक्षु मळे तो एनी सेवा करवानो ने मन थई जाय। ईसो बतावे छे गुणवान मुमुक्षु मिले तो इतना भाव आ जाए कि मैं उनकी सेवा में रह जाऊं। ये इनको बहुत गुण प्राप्ति की अभिलाषा है, बहुत गरज है, ऐसा सूचित करता है। दूसरे गुणवान के प्रति यही कारण से उसे मात्सर्य भाव नहीं होता। घूमने में ये चर्चा चली थी, वो पॉइंट आ गया। ये तो लिखा है हमने 12 साल पहले लिखा है।
है?
2040 12 साल लिखा है, 39 में वो प्रकाशन हुआ, 40 में छपना हुआ, 40 में लिखा है, 39 12-13 साल के पहले वो बात लिखा है। यही कारण से मत्सर चला जाएगा, मत्सर उत्पन्न ही नहीं होगा।
मत्सर आम तो मान प्रकृति में थी आवश्यक।
हाँ, मान
मान प्रकृति,
मान प्रकृति में थी। मान नहीं, प्रकृति में थी। मात्सर्य होने के बाद तो कितना तूफान करेगा इसका कोई फिर हिसाब नहीं है। लेकिन होता है वो मान प्रकृति में से होता है। मैं गौण रह गया इसकी मुख्यता हो गई, उसमें भी मुमुक्षु वृंद में जो होता है वो इस तरह से होता है कि मुमुक्षु में सबका प्रवेश एक काल में नहीं है, आगे पीछे होता है। तो कुछ पुराने होते हैं, कुछ नए होते हैं। अब पुराने आगे नहीं बढ़ते हैं और नए वाले कोई आगे बढ़ जाते हैं या गुणवान हो जाते हैं, तो पुराने वाले को मत्सर होने की संभावना बहुत रहती है। क्योंकि एक तो वो आगे नहीं बढ़े, ये इसकी योग्यता है। तो आगे नहीं बढ़े और नए को तो यानी तो पुराना नया तो दिखते नहीं, ज्ञानी पुराना नया नहीं दिखते। वो तो योग्यता किसमें है, उसको ही रिस्पांस देंगे, उसको ही संबोधन करेंगे, उसके प्रति उसका जो प्रेम भाव है वो दिख ही जाएगा।
ऐसी मान प्रकृति कहाँ से चालू होती है? मान प्रकृति कैसे चालू होती है?
तो मान प्रकृति में ये होता है कि हम तो पुराने हैं, ये तो नया नया है, उनको इतना क्यों आदर मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है। तो यहाँ से ये मात्सर्य भाव चालू हो जाता है, बहुत करके ऐसा होता है।
वैसे सत्पुरुष मात्सर्य भाव उत्पन्न न था अथवा थयो तो काढ़वा माटे शुं प्रयत्न
करे? उनके साथ बीजों करे। वो तो बताए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जीव माने तब तो ऐसा है। इस काल में ये देखा जाता है कि सत्पुरुष की आज्ञा में रहने वाला जीव मिलना ही मुश्किल है। तो सत्पुरुष का चरण का इच्छुक क्यों पहला लिया, कि वो तो लिमिट में आ गया, कि वो आज्ञा बाहर नहीं जाएगा, वो देखेगा कि इसका विकल्प क्या है, वो मेरे लिए आज्ञा है, इसका विकल्प इसके प्रति जाता है, मेरे को इसका अनुसरण करना है, वही देखेगा। जैसे सत्पुरुष ने कोई नए मुमुक्ष को अधिक आदर दिया, तो जो इसके चरण का इच्छुक होगा वो इसके पीछे जाएगा, तो मैं भी इसका आदर करूं, मैं पुराना हूं इसलिए इसका आदर नहीं करूं, वो बात नहीं, मैं भी इसका आदर करूं, ये बात आ जाएगी, वरना उसको गड़बड़ होगी, कैसा क्यों, और वो आज्ञा में तो खुद है नहीं, तो आज्ञा विरुद्ध गड़बड़ हो जाएगी, ये बात होने वाली है। अरे पाछो पीछे पाछे पड़ी दिया, आगे तो न वधवा दे, एने पछाड़े, अथवा किसी भी मुमुक्षुता में आगे बढ़ने का चाहक जीव है कि मुझे आगे बढ़ना है, ऐसी चाहना रखता हुआ जीव अगर भूल से भी मत्सर्य में आ गया तो भयंकर गड़बड़ हो गई उसके परिणाम में। क्या हो गया? बहुत भयंकर गड़बड़ हो गई, ऐसा समझना चाहिए।
वात्सल्य भाव
वात्सल्य का तो घातक होगा, लेकिन तूफान बहुत हो जाएगा उससे, बहुत तूफान हो जाएगा, कहना मुश्किल है कि कहां तक हो जाएगा। क्यों? कि वो खुद ऐसा चाहता है कि सत्पुरुष का परिणाम ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या चाहता है वो?
सत्पुरुष का परिणाम,
कि ज्ञानी का परिणाम ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं चाहूं वैसा होना चाहिए, तो उसकी चेष्टा उसका पुरुषा प्रयत्न ज्ञानी के विरुद्ध में आए बिना नहीं रहेगा, नियम से आ जाएगा, फिर कितने हद में आएगा वो कहना मुश्किल है।
पुतानी इच्छा मुझे परिणाम आ चाहे जी,
ऐसा क्यों, ऐसा नहीं
होगा, क्या रही
है
मुक्षुदा, क्या रही,
फिर वो तो बात खत्म हो गई, इसलिए उसका भयंकर शब्द लिया है कि ये दुर्गुण है वो मामूली नहीं है, ये दुर्गुण भयंकर है, कहाँ ले जाएगा कहना मुश्किल है। तो उसकी भयंकरता अगर ख्याल में आए तो बचना संभव है, वरना बचना भी संभव नहीं है, बहुत लाइटली ले लेगा।
मत्स्य ने हेल्दी कंपटीशन मत दिक्कत होगी,
मत फिर उल्टा सुलटा मेरे जितने भी अवरोधक कारण है वो मिटाना है, वो कहाँ आएगा, वो अपने पर आ जाएगा, वो अपना पर आ जाएगा, तो मेरे में सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में अवरोधक कारण कौन है, तो सत्पुरुष के चरण में जाएगा, बोले तो मुझे बताइए अब मेरे में अवरोधक कारण कौन रहा, अब मेरे में अवरोधक कारण कौन रहा, मेरे मुझे निकालना है, मेरे आज मेरे को जल्दी करना है, मेरे को शीघ्र करना है, और वो अपने लौकिक में भी उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहता है। क्या कहता है?
स्पोर्ट्समैन स्पिरिट।
तो जैसे कोई प्रतिस्पर्धी आमने सामने, जैसे बैडमिंटन में दो ही होते हैं, क्रिकेट में तो 11 होते हैं, लेकिन इसमें तो आमने सामने दो ही होते हैं प्रतिस्पर्धी, जो हार जाता है वो कॉन्ग्रेचुलेशन देगा जीतने वाले को, तो तुमने हमको हराया कॉन्ग्रेचुलेशन, उसको हाथ मिलाएगा, उसको कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ये मात्सर्य भाव वाले तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं रहा वो तो उससे भी गया बीता, ये बात हो गई। ખૂના અંતર નિવૃત્તિ પૂર્વક સ્વકાર્ય કી ધગસ વાલા મુમુક્ષુ જીવ. તીસરા ગુણ જો હે ને, એક એક પેરેગ્રાફ લિયા હૈ, એક એક બાત પર એક એક પેરેગ્રાફ લિયા હૈ. અંતર નિવૃત્તિ પૂર્વક સ્વ કાર્ય કી ધગસ વાલા મોમોક્ષુ જીવ, જિસકો અંતર નિવૃત્તિ હૈ ઉસકો બાહ્ય નિવૃત્તિ ભી પસંદ હૈ. અંતર નિવૃત્તિ એટલે અપને પરિણામ કિસી ભી પ્રવૃત્તિ મેં નહીં લગે, એક આત્મ કાર્ય કી પ્રવૃત્તિ મેં રહે, આત્મ કલ્યાણ કી પ્રવૃત્તિ મેં રહે, દૂસરી પ્રવૃત્તિ જિસકો પસંદ નહીં હૈ. वरना इस क्षेत्र में भी बहुत सी प्रवृत्ति होती है, सामाजिक प्रवृत्ति आ जाती है या संस्था की प्रवृत्ति आ जाती है, ऐसे अनेक प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है. तो अंतर्निवृत्ति पूर्वक वो बाह्य प्रवृत्ति में भले कोई सामाजिक प्रवृत्ति न करे, कोई संस्था की प्रवृत्ति नहीं करे, परंतु दूसरे मुमुक्षु के विषय में लक्ष्य जाए और इसकी पंचायत हो जाए, वो भी अंतर प्रवृत्ति को घातक है, अंतर निवृत्ति को घातक है. जिसको अंतर निवृत्ति चाहिए वो अंतर निवृत्ति की घातक हो जाती है. वो कैसा है, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अंतर्निवृत्ति वाले का काम नहीं है. अंतर्निवृत्ति पूर्वक स्व कार्य की धगस वाला, स्व कार्य मैंने आत्म कल्याण का कार्य, और उसकी धगस क्या, उसकी धगस है वो आगे पीछे नहीं देखेगा. धगस करने वाला क्या है, परिणाम में दौड़ आती है, वो दौड़ता है वो आगे पीछे नहीं देखेगा. ऐसा मुमुक्षु जीव ब्रह्मचर्य को बाह्य प्रवृत्ति और विकल्प को नहीं बढ़ने का कारण समझता है. वो ब्रह्मचर्य को क्या समझता है कि एक तो बाह्य प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी और अपना विकल्प भी नहीं बढ़ेगा. क्यों, तो गृहस्थी में जो जाता है उसको हजार झंझट खड़ी हो जाती है, तो बाह्य प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है और विकल्प वृत्ति भी हो जाती है. और परिणमन में तथा प्रकार की मलिनता से दूर रहने की भावना से वो ब्रह्मचर्य की चाहना वाला होता है. और परिणमन में भी वो जानता है कि इसमें मलिनता बढ़ती है या आ जाती है, तो उस मलिनता से दूर रहने की जिसकी भावना है उसको भी ब्रह्मचर्य की चाहना रहती है. प्रारंभ में भी इस प्रकार के विकल्प बहुत आते हैं, मोक्ष में प्रवेश करते ही इस प्रकार के विकल्प बहुत आते हैं कि हमको अगर इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो जितने भी प्रवृत्ति बाहे में बढ़ेगी बोझा बढ़ जाएगा तो अवकाश कम रहेगा. उस रूप से ये भावना में मुमुक्षु जीव आता है, ब्रह्मचर्य की भावना में आ जाता है. ये नेचुरल है एकदम. तीसरा चौथा परिपूर्ण निर्दोष दशा का ध्येय बांधने वाला तीसरा स्टेज आया. पूर्ण निर्दोषता का ध्येय को तो निश्चित करता है, निर्धार करता है, बांधना मैंने निर्धार कर लेता है कि पूर्ण निर्दोष मुझे होना है. ऐसे मुमुक्षु जीव की निज हित की प्रयोजन की सूक्ष्म दृष्टि हो जाने से, उसकी निज हित की प्रयोजन की दृष्टि एकदम सूक्ष्म हो जाती है. जब वो स्वदोष को अपक्षपात रूप से देखता है वो क्या करता है कि वहां से अंतर अवलोकन उसका चालू होता है। यथार्थ अंतर अवलोकन ध्येय मानने के, ध्येय का निर्धार होने के पश्चात होता है, इसके पहला अंतर अवलोकन उतना नहीं होता है। और स्वदोष को अपक्षपात रूप से देखता है तब उसको छोड़ने की सावधानी में उसका परिणाम प्रवर्तित होने लगता है। ये अंतर अवलोकन का विषय चालू हो गया। कल अंतर अवलोकन की अपेक्षा ध्यान की बात चली थी, देखते रहो देखते रहो। उसमें अवलोकन में सबसे पहला उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य अवलोकन करने का रखो कि आइंदा ऐसा दोष मेरा नहीं होगा, ऐसा तो अवलोकन यहां से चालू होता है कि परिपूर्ण निर्दोष दशा का ध्येय बांधने वाला मुमुक्षु जीव की निज हित की प्रयोजन की दृष्टि सूक्ष्म हो जाने से जब वह स्वदोष को अपक्षपात रूप से देखता है तब उसको छोड़ने की सावधानी में उसका परिणाम प्रवृत्ति करने लगता है। अकेला देखता नहीं है, दोष से बचने का भी सावधानी उसको आ जाती है। ऐसा मुमुक्षु जीव को स्वच्छंद होने का अवकाश नहीं रहता। ये स्वच्छंद है वो सबसे बड़ा दोष है। उसके पेट में बहुत सब प्रकार के दोष आ जाते हैं। स्वच्छंद के पेट में सभी प्रकार के दोष आ जाते हैं। और परिभ्रमण का भी सबसे मुख्य कारण वो है तो स्वच्छंद है। और कृपालु देव ने सबसे पहले वो बात लिया सत्पुरुष का चरण का इच्छुक, तो सत्पुरुष के चरण में आ गया तो पहला स्वच्छंद गया उसका, क्या गया
स्वच्छंद,
पहले स्वच्छंद जाएगा या स्वच्छंद कंट्रोल में आ जाएगा उसका। तो सबसे बड़ा दोष है ये कंट्रोल में हो गया, एक जगह जिन नीति का विषय लिया है हमने, जिनेश्वर देव की नीति क्या है, जिन मार्ग की नीति क्या है, इसका मतलब क्या है कि जिन मार्ग की नीति क्या है कि सबसे पहले बड़ा दोष को मारना, छोटे दोष को पहले नहीं मारना। अज्ञानी क्या करता है कि चारित्र के जो दोष है उसको बड़ा गिनता है, अरे इसने मांस खाया, इसने दारू पी लिया, इसने चोरी कर लिया, तो ये भड़कता है वहां से। सबसे बड़ा दोष दर्शन का है और स्वच्छंद का है, ये सबसे बड़ा दोष। तो ज्ञानी सबसे बड़ा दोष को पहले निकालेगा। हमारे सामने पहले तो एक राज और दूसरे राज के बीच में लड़ाई होती थी ना, तो लड़ाई आती है किसके प्रति लड़ना, राजा के सामने लड़ना। राजा को मार दिया सैन्य भगने लगेगा, उस सैन्य को मारेगा तो दूसरा सैन्य आ जाएगा, राजा तो दूसरा सैन्य ले आएगा, आज सैन्य को मारा तो दूसरा सैन्य आ जाएगा, सैन्य को मारेगा चारित्र मोह को मारेगा तो और पीछे खड़ा हो जाएगा, वो तो पनपेगा बाद में, क्योंकि दर्शन मोह इसका मूल है, वो तो जीवंत है। तेरा अज्ञान रूपी पाड़ा तेरा सब चारित्र को खा गया, चबा गया, खा गया क्या, चबा गया, चावी गया, व्रत किया उपवास किया, ચારિત્રો લીધા, દીક્ષાઓ લીધી, અજ્ઞાન રૂપે પાડો બધો ચાલી ગયો. તો યહાં પર જો અપના દોષ કો નિષ્પક્ષપાત રૂપ સે દેખતા હૈ, ઉસકો સ્વચ્છંદ હોને કા અવકાશ નહીં હૈ. તો સ્વચ્છંદ હોને મે નહીં હોને મે દો બાત આ ગઈ. એક સત્પુરુષ કે ચરણ મે આયા તો સ્વચ્છંદ નહીં હુઆ, ઓર એક અપના દોષ દેખને લગા તો સ્વચ્છંદ રુક ગયા, સ્વચ્છંદ કો મારા. ઓર ઇસલિયે વો બાત 609 મે લિયા હૈ
જી.
609 પત્ર મે સત્સંગ કા પત્ર હૈ, ઉસમે આ યે દોનો પોઇન્ટ લિયા હૈ. તો પણ જો નિવર 254 મે ભી લિયા હૈ, જો અપના દોષ અપક્ષપાત રૂપ સે દેખતે હૈ ઉસકો સ્વચ્છંદ કો હાનિ પહોંચતા હૈ.
બરાબર,
254 ઉસકો સ્વચ્છંદ કો હાનિ પહોંચતા હૈ, એસે શબ્દ લિયા હૈ 254 મે. और इसलिए प्रत्येक पल वह प्रयोजन को चुके बिना प्रवर्तता है. हर पल में उसकी सावधानी रहेगी, मेरा प्रयोजन कहाँ है ये सूझ आ गई. हितरूप प्रयोजन, हितरूप परिणाम और अहितरूप परिणाम दोनों पर सावधानी आ गई, तो वो परिणाम पर गड़बड़ होने का जो चांस था वो स्वच्छंद के कारण से था, वो नहीं रहा. इसलिए गिरने का अनेक स्थान होने पर भी ये सबसे वो बच जाता है. गिरने का स्थान बहुत है, चुकने का स्थान बहुत है. तो जो अपना दोष अपक्षपात रूप से देखता है वो सबसे बच जाता है और अपना हित वो साध सकता है.
हित हित संबंधी जागृति आ गई,
जागृति आ गई, हित हित के विषय में उसको जागृति आ गई प्रयोजन की दृष्टि के कारण से. प्रयोजन की दृष्टि क्यों खुली? संपूर्ण निर्दोष होने का ध्येय उसने निर्धार कर लिया. पुनः दूसरा पॉइंट, मुमुक्षु जीव अनेक का परिचय व्यर्थ समय गवाने का निमित्त समझता है. तो सिलेक्टेड पर्सन के ही परिचय में रहेगा, ज्यादा का परिचय नहीं करेगा, क्योंकि मुमुक्षु में भी बहुत से लोग आते हैं, तो सब एक कोटि के होते नहीं. और बहुभाग जीव तो निम्न कोटि के ही होते हैं, ऊपर के कोटि वाले तो कुछ एक होते हैं. तो उसका जो संग है वो सिलेक्टेड पर्सन में हो जाएगा,
संग
संघ का विवेक हो जाएगा. क्यों? तो उसका उसको विवेक हो गया. क्या विवेक हो गया? कि ज्यादा का परिचय अनेक मैंने बहुत का जो परिचय है तो व्यर्थ समय गंवाने का निमित्त हो जाता है. उसमें व्यर्थ समय बहुत हो जाता है, व्यर्थ बहुत जाता है, वो समझ लेता है, वो विवेक हो गया. इसलिए परिचय बढ़ाने का प्रसंग से वह दूर रहना चाहता है. हमको परिचय नहीं बढ़ाना है, खुद की योग्यता बढ़ेगी तो भी ऐसा बोलेगा. मेरी चर्चा कुछ कहीं भी नहीं होनी चाहिए, मेरे में कुछ नहीं है. क्या बोलेगा?
मेरे में
तो बहुत अवगुण भरे हैं, मेरे को तो बहुत गुण प्रकट करने का बाकी है, इसलिए मेरी चर्चा तो होनी ही नहीं चाहिए. ये अच्छा है, वैसा है, ऐसा है, मेरी प्रशंसा होनी ही नहीं चाहिए. चर्चा मैंने मेरी प्रशंसा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रशंसा होने से बहुत लोग का परिचय होने का प्रसंग बन जाता है और वो अनुकूल नहीं है. मुमुक्षु की भूमिका में वो बिल्कुल अनुकूल नहीं है. जितना परिचय कम हो उतना ही अच्छा है। मुमुक्षु जीव अनेक का मैंने ज्यादा का परिचय व्यर्थ समय गंवाने का निमित्त समझता है, इसलिए परिचय बढ़ाने का प्रसंग से वह दूर रहना चाहता है। अर्थात एकांत में रह करके उसका क्या अभिप्राय है कि वो एकांत में रह करके निज कार्य में अधिक रस लेना चाहता है। मैं तो एकांत में अपना कार्य में लगा रहा हूँ, मेरा तो ये मुझे तो यही करना है कि एकांत में मेरे कार्य में मैं लग जाऊं, मेरे को दूसरे से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार से आत्मार्थ को एकांत सहज प्रिय होता है, एकांत प्रियता सहज ही होती है आत्मार्थी को, क्योंकि एकांत में अपना चिंतन अपना मनन गोलन अच्छा चलता है, अवलोकन भी अच्छा चलता है, ये सब बनता है। और ज्यादा का परिचय तो उसमें बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि परिचय करने लायक नहीं होते हैं, तो अपना समय बिगड़ता है इसमें। पर કટોકટીના સમયમાં પણ પોતાનો એકાંતનો સમય ખેંચી લે છે, એનું કારણ શું છે? પરિચય બઢને છે, સત્સંગ બઢતા હે, સત્સંગ નહીં બઢતા હે, સત્સંગ બઢ જાતા હે, કે સબ પરિચય કરને લાયક હોતે નહીં। इस काल में आगे बढ़ने वाले मुमुक्षु बहुत कम होते हैं, तो बाकी में परिचय बढ़ाने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो एकांत तो ये था सहज होती है उसमें, अपना कार्य में जो उसको लगे रहना है, उसको डिस्टर्बेंस तो पुसाता नहीं, उसको तो डिस्टर्बेंस अवरोध लगता है, वो एकांत में रहेगा ज्यादा।
एकांत ने महत्व आप पहला अपने परिचय ने महत्व के मान
એકાંત થી વિરુદ્ધ શું છે? પરિચય તો પ્રતિપક્ષ ની ચર્ચા ન કરો તો વિષય ખુલે નહીં, એટલે સામે પડખું બતાવો તો વિષય ખોલી જાય ને, સ્પષ્ટ થઈ જાય ને, એટલા માટે અનેક નો પરિચય અને એકાંત બે વિરુદ્ધ છે એમ કેવું છે। તો પોતાના એક તો પોતાના અપને પાસ સમય બહુ સીમિત હૈ, લિમિટેડ હૈ, તો કામ બહુ બાકી હૈ, તો અપના સમય બિગડે હોય કિસકો પોસાયેગા, કોઈ નહીં પોસાતા, સમય બિગડના સબ પાત્રતા મેં એસે પરિણામ સહેજ હોને લગતે હૈ, સહેજ સહેજ હી હોતે હૈ, એસા હી હોતા હૈ કે ગુપચુપ મેં મેરા કામ એકાંત મેં કરો, અગર એકાંત મેં એકાંત અકેલા એકાંત મેં વો નહીં રહેગા, तो अपने से जो अधिक गुणी है उसका सत्संग करेगा, वो एकांत है, वो भी एकांत है, वो भी एकांत है, वो सत्संग के प्रकरण में लिखा है, समगुणी का संग करना वो एकांत है।
बजाय बच्चे कोऑर्डिनेशन बराबर चलते हैं,
ये सब कोऑर्डिनेटेड परिणाम है। तीर्थ स्थान यह महापुरुष के आचरण और अंतरंग उज्जवल परिणामों की स्मृति का निमित्त है। तीर्थ स्थान जहाँ महापुरुष ने साधना की हो, जहाँ हो, जिस स्थान में वो रहे हो, निवास किया हो, और तीर्थंकरों के जो पंचकल्याणक है, वही सब तीर्थ स्थान है। जहाँ जहाँ उसके जो पंचकल्याणक हुए हैं वो सब तीर्थ स्थान है, जन्म हुआ वो भी तीर्थ स्थान है। जन्म हुआ वो जन्म के वक्त बोध नहीं देते हैं, लेकिन वो भी तीर्थ स्थान है, ऐसी बात है। तीर्थ स्थान ये महापुरुषों का आचरण और अंतरंग उज्जवल परिणामों की स्मृति का निमित्त है। महापुरुष का आचरण कैसा था और उसके अंतरंग में उज्जवल परिणाम कितने कैसे होते थे, वो मां स्मरण में आता है। इसलिए ऐसा ऐसा स्थानों का प्रवास करने की भावना भी मुमुक्ष को आती है। ऐसी भावना आएगी उसको, क्योंकि अपने परिणाम वहां स्मरण में ही, जैसे अपन समृत शिखर जाते हैं, ऊपर ही भगवान अनंत तीर्थंकर विराजते हैं। कितने वहां से तो अनंत तीर्थंकर गए ना, समृत शिखर से अनंत चौबीसी के अनंत तीर्थंकर गए, इस काल में 20 गए, बाकी तो सब 24 वहां से जाते हैं। तो वहां जाते तो अपने बराबर माथे पे ही अनंत तीर्थंकर क्या सिद्धात्मा विराजमान है, उसका स्मरण होता है। हम फर्स्ट टाइम गए तो ऐसे इस प्रकार से स्मरण करते हैं, फिर दोस्तों देखो अब हम सिद्धालय में चले जाते हैं और सभी अनंत तीर्थंकरों के सिद्धात्मा को दर्शन करने लग जाते हैं। और सिद्ध गति को जो प्राप्त सिद्ध भगवान है, जितने भी तीर्थंकर के अलावा भी बहुत है, अनंत है, तीर्थंकर तो सीमित है, इसके ज्यादा तो बिना तीर्थंकर वाले हैं, वो तो वहां से हिलते नहीं, लेकिन हम हिला देते हैं उसको क्या ये सभी को नीचे ले आते हैं, हमारे हृदय में ले आते हैं खींच करके। वो कितने भी मजबूत हो गए तो वो तो क्या हो गया, हम तो उसको नीचे ले आते हैं, हमारे उपयोग में सब आते हैं अभी। तो ऐसे उस स्मरण का एक निमित्त होता है, इसलिए वहां जाने का भाव मुमुक्षु को भी रहता है और धर्मात्मा को भी रहता है, सबको रहता है।
ऐसे भाई शिखर में खाली पगला जो अपना भाव नहीं आ रहा, खाली अगर पथरा जीने जो कर
પહેલી વખત ગયા તારે પર્યુષણમાં 2033 ની સાલમાં કલકત્તા દશલક્ષણ પર્વમાં ગયો હતો, પછી દશલક્ષણ પર્વ પછી સમય શિખર ની યાત્રામાં ગયા હતા, તો પછી ત્યાં અમારા સાથે આવે ને 22 જણા સાથે હતા, મેં જ્યાં પગલા હોય ને ત્યાંથી જ કહેતો, જો અહીંયા ઉપર છે લિયાવો બધાની અંદર ઉપયોગમાં, બધા અનંતા સિદ્ધિને નીચે લિયાવો, હા એવી રીતે એક સ્મરણ નું ચિહ્ન છે। ગુરુદેવ સાથે યાત્રામાં એક જ વખત છું, 2017 સાલમાં જૂનાગઢમાં ગિરનારની યાત્રા, ત્યાં છેલ્લી જે ટૂંક છે આજની ટૂંક નિમનાથ ભગવાનના નિર્વાણ ભૂમિ, ત્યાં 2 કલ્યાણક થયા છે, સહસ્ત્રાવનમાં દીક્ષા કલ્યાણક છે અને અહીંયા નિર્વાણ ભૂમિ છે, ત્યાં 5 ટૂંક ઉપર ગુરુદેવ યાદ કરતા હતા, મેમના ભગવાન નો આત્મા ઉપર આપણા માથે બિરાજે છે અત્યારે. સંશ્રેણીય છે ને, સંશ્રેણી એટલે વર્ટિકલી, વર્ટિકલી સીધે સીધા એ રીતે એમના આત્માનું સ્મરણ થાય છે અને ભાવમાં સમીપતા થાય છે. એમના આત્માને ઉપયોગની અંદર સમીપતા થાય છે. માર્ચ એપ્રિલ માં રાખે સ્ટીરિંગ ને જ ગુમાવાનું. નળવી ધાર્મિક સ્થળો ઓર ધાર્મિક સ્થળ મેં ધર્માત્મા કા આવાગમન કા સ્થાન હૈ. ધાર્મિક સ્થળ હૈ વો ધર્માત્મા કે આવાગમન કા સ્થાન હૈ. યહી ઉપર કે કારણ સે ધર્માત્મા લોગ ભી આના જાના હોતા હૈ ઉસકા. ઇસલિયે એસે સ્થાનો મેં સત્સંગ કી ભી સંભાવના રહેતી હૈ. મુમુક્ષુ જીવ કો એસે એક્સિડન્ટ બન જાતા હૈ. કોઈ જાતા હૈ તીર્થ સ્થાન કી યાત્રા મેં, પર મિલ જાતા હૈ વહાં કોઈ ધર્માત્મા. સત્સંગ ચલતા હૈ ધર્માત્મા હોતા હૈ વહાં સત્સંગ ચલતા હૈ. સત્સંગ ચલતા હૈ તો વો ભી બેઠ જાતા હૈ કભી ઉસમે સે ઉસકો લાઇટ હો જાતી હૈ. અરે યે બાત કૈસે આતી હૈ, એસી બાત સ્વાનુભવ કી તો સુને નહીં હમને. ઉસકો ગહરાઈ મેં જાયેગા, પરિચય બઢાયેગા, ઉસકો ધર્માત્મા કા યોગ બન જાયેગા. યે તીર્થ સ્થાન મેં સંભવિત કારણ હોને સે ભી મુમુક્ષુ જાતા હૈ તો દો બાત વહાં કરતા હૈ. કોઈ ધર્માત્મા હૈ કે નહીં હૈ, સત્સંગ ચલતા હૈ કે નહીં ચલતા. આજકલ સત્સંગ નહીં ચલતા હૈ, સબ પૂજા ભક્તિ કરકે ભગતે હૈ, લેકિન ધર્માત્મા હોતા હૈ તો સત્સંગ ચલતા હૈ. વો ભાગા દોડી મેં નહીં રહેતે.
ઇડર માં કોઈ કોઈ આવી જતો
હૈ,
ઇડર માં કોઈ કોઈ જણે ન તો
તીર્થ સ્થાન વાળા જો બોલ હૈ પીછે, તીર્થ સ્થાન માં ઉત્સાહિત વૃત્તિ વાળા એ કારણ છે. ઇસકે પીછે વો કારણ હૈ, દો કારણ હૈ ઇસ પ્રકાર કે. હમણાં સામાન્ય રૂપ સે આહાર વિહાર ઓર નિહાર કી અનિયમિતતા સાધના કો બિલકુલ અનુકૂળ નહીં હૈ. આહાર વિહાર ઓર નિહાર ઉસમે જીતની અનિયમિતતા ઉતને સાધના ડિસ્ટર્બ હો જાયેગી. જૈસે તબિયત ઠીક નહીં રહેતી હૈ, સત્સંગ મેં બેઠા ઓર લેખન જાને કા હુઆ ક્યા કરે. ડાયાબિટીસ હો તો પેશાબ કરને કા જાને કા હોગા, ઉસકો તો સત્સંગ કી લિંક છૂટ જાયેગી. ક્યા હુઆ
અનિયમિતતા
આહાર કે નિયમિતતા ને મિતાહાર હોના ચાહિયે. મિતાહાર મને કે જ્યાદા કમ ભી નહીં ઓર જ્યાદા અધિક ભી નહીં, મીડિયમ. હા થોડા કમ ખાના, જો ભી ભૂખ હૈ ઇસે થોડા કમ ખાના, ઉસકો મિતાહાર કહેતે હૈ. તો ઉસકી જો રેગ્યુલરિટી રહી બહુભાગ સ્વાસ્થ્ય નહીં બિગડેગા. બાકી પૂર્વકર્મ દૂસરી વાત હોતી હૈ, બહુભાગ તો આહાર કી અનિયમિતતા સે હી સ્વાસ્થ્ય બિગડતા હૈ. ઓર બહુભાગ જીવ કો જો રસનેન્દ્રિય હૈ વો કંટ્રોલ મેં નહીં રહેતી. અચ્છા લગા તો થોડા જ્યાદા ખા લિયા, ખાને મેં અચ્છા લગા કે થોડા જ્યાદા ખા લિયા, એ બનતા હૈ. તો મુમુક્ષુ જીવ કો તો જાગૃત રહેના હૈ કે યે ચીજ દેખે દેખતે હી સાવધાન હો જાય. क्या रसमलाई को देखा क्या कल हमने खाया बोलिए ऐसे घर पे तो देखते ही सावधान हो जाए। पहले तो निषेध आया कि नहीं खाना है, फिर बोले कि नहीं खा लो खा लो, तो बहुत अल्प थोड़ा खा लेना है, ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा खाना भी नहीं और खिलाने वाले को ज्यादा खिलाना भी नहीं, दोनों बात रखना है।
भाई सी वो तो सहज में निषेध आता जाता है, भारत में भी फिर सहज में निषेध आता जाता है, सहज में चलता जाता है, भारत का भी फिर
सहज में
चलता जाता है।
जब अपनी प्रयोजन की पकड़ होती है और तो उसमें अपना सहज ही फिर मतलब कम होता चला जाता है, करना नहीं पड़ता है,
वो जागृति रह जाती है। हमको मिठाई से स्वास्थ्य बिगड़ता है तो बाद में, परिणाम पहले बिगड़ता है क्या परिणाम तो पहले बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य बाद में बिगड़ेगा, तो आत्म स्वास्थ्य पहले बिगड़ा इसलिए ये साधना को बिल्कुल अनुकूल नहीं है, अनियमितता होती है, परिणाम बिगड़ने से ही होती है।
पेट में कहीं स्वाद नहीं,
हाँ जीभ में स्वाद है, पेट में तो स्वाद है नहीं,
तो खाड़े तो पेट में पड़े,
हाँ जीभ पर तो रहते नहीं गए, एक मिनट पर न रही है कोई चीज, हाँ सीधी अंदर रही जाए, यानी क्या स्वाद आवत नहीं गए पेट में, एक थोड़ी सेकंड ना स्वाद माटे आत्मा ने परिणाम बगाड़वा और शरीर ने बगाड़व दो बिगाड़ना नुकसानी का धंधा। लेकिन डॉक्टर लोग भी नसीब लेके बैठे हैं
पानी जाए इतना तीखो है ने तो ही खाता करे मजा आ रही है, लेकिन उतना आत्मा नाका पानी जाए से इतना तीखो तम तम तो है नहीं मजा आ रहा है
और वृत्ति में स्वच्छंद उत्पन्न करने वाली है वो अनियमितता क्या है, वृत्ति में स्वच्छंद उत्पन्न करने वाली है
स्वच्छंद
अर्थात साधना में बाधक होती है। इसलिए मुमुक्षु जीव ध्येय प्राप्ति का लक्ष्य से, मुमुक्षु जीव को तो ध्येय प्राप्ति का लक्ष्य से राग रस मंद होने हुआ होने से सहज रूप से नियमित आहार विहार आदि में बरतता है, सहज रूप से वो लिमिट में आ जाएगा। कोई ज्यादा खाने से हमको क्या फायदा है, कुछ नहीं है। ना परिणाम में स्वच्छंद आ जाए से कंट्रोल ना रही है, कंट्रोल ना रही है स्वच्छंद आ जाए। स्वच्छंद बे प्रकार है, एक आज्ञा में ना रहू ये स्वच्छंद है और एक परिणाम में कंट्रोल ना रहू एनु नाम पण स्वच्छंद है। अहीं आई बात है
पंचेंद्रियना विषय में
तीव्र रस तीव्र थी, पंचेंद्रियना विषय में तीव्र थी राग रस मंद हुआ होने से सहज रूप से नियमित आहार विहार आदि में वो बरतता है। तीव्र राग रस वाले की माफिक यानी तरह तीव्र राग रस वाला की तरह मर्यादा बाहर की प्रवृत्ति सहज उसको नहीं होती, ज्यादा खाएगा नहीं स्वास्थ्य बिगड़े ऐसा कभी नहीं
खाएगा।
નહીં તો શું છે ફરવા જવામાં પહેલવાન થવાની વાત આવે પછી તો એ જરૂરી નથી, નિયમિત એનું જે સેન્ટર પોઈન્ટ છે એ આત્મકલ્યાણ છે, આત્મ સાધના ને અનુકૂળ કેટલી વાત રહી
સ્વાગત। Amen.